श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन कोई भी उन्हें विदा करने को तैयार नहीं था। सभी उनके साथ जाना चाहते थे, पर सबसे बड़ी चिंता थी लक्ष्मण की मां सुमित्रा की। उनके पुत्र को तो वनवास नहीं मिला, फिर भला वो उसे वन क्यों जाने देती। पर जब श्री राम को पता चला कि मां सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को विदा किया है, तो उनकी दृष्टि में सुमित्रा का स्थान माताओं में सबसे ऊंचा हो गया। पर अब एक सबसे बड़ा संकट था सीता को समझाने का, जो कि राम को कठिन ही नहीं असंभव लग रहा था। सीता ने तो श्री राम के साथ चलने के लिए राजसी वेश त्याग कर गेरुए वस्त्र भी धारण कर लिए थे।
सीते, आप यहां और इस वेश में? मैं कुछ समझा नहीं सीते।
वन जाने के लिए गेरुए वस्त्रों में ही होना चाहिए ना स्वामी?
पर देवी सीते, वन तो मैं और लक्ष्मण जा रहे हैं।
मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी, क्या आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मुझे आपके साथ चलने का अधिकार नहीं है? आज तक आपने अपने सभी सुख मेरे साथ बांटे हैं, और अब जब दुख की घड़ी आई तो मुझे स्वयं से दूर कर देना चाहते हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय करेंगे स्वामी?
तुम मेरी पत्नी से पहले मिथिला की राजकुमारी हो सीते, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है, कभी धरती पर पांव भी नहीं रखने दिया तुम्हें। भला उन्हें कैसा लगेगा जब वो ये जानेंगे कि उनकी फूल सी कोमल बेटी राजमहल के सारे सुखों को त्याग कर वनों में भटक रही है?
पत्नी के लिए पति के साथ से बड़ा सुख और कौन सा हो सकता है स्वामी? आपके चरणों में स्थान पाने के लिए ही तो मैंने बरसों बरस व्रत किए हैं।
पर वन भयानक राक्षस और जंगली जानवरों से भरा हुआ है सीते, आप साथ रहीं तो मुझे हर पल आप ही की चिंता सताती रहेगी। आपका एक एक कष्ट मेरे लिए सैकड़ों मृत्यु की पीड़ा जैसे होगा सीते।
आपके चरणों में मुझे सौ सौ मृत्यु भी आ जाएं स्वामी, तो भी मैं अपना जन्म सार्थक समझूंगी। मुझे लगेगा कि मुझे मेरा परम धाम मिल गया है।
सीते,
तो मुझे आज्ञा है ना स्वामी?
मुझे भावनाओं में बहाकर मुझसे अनर्थ मत करवाओ सीते।
और मेरी भावनाओं का क्या होगा स्वामी? आपको स्मरण है ना, विवाह के अंतिम फेरे में मैंने क्या कहा था? यदि मृत्यु आई तो मैं आपसे आगे बढ़कर उसका वरण करूंगी, और ये वचन कहकर मैंने सातवां फेरा लिया था। यदि आप ही साथ ना हुए तो मेरे उस वचन का क्या होगा?
सीते,
आप कुछ भी कहें स्वामी, मेरा निर्णय अटल है।
तुमने सोच कैसे लिया कि इसके लिए पिताजी और माँ तुम्हें अनुमति देंगे?
स्वामी, पिताजी ने छोटी माँ को ये वचन तो नहीं दिया है ना कि आप अकेले ही बन जाएंगे?
अब मैं क्या कहूँ? चलो पिताजी और मां से आशीर्वाद ले लो।
कहे ओ कृपाल भानुकुल ना था परिहर सोच चलहूं वन सा था।
अयोध्या के इतिहास की ये पहली घटना थी जिसमें अब तक के सबसे योग्य उत्तराधिकारी को अभिषेक से ठीक पहले वन भेज दिया गया था। जब राम सीता के साथ माँ कौशल्या से अंतिम बार मिलने गए तो कौशल्या भला कैसे विदा करती है।
तुम्हारे बाद मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा राम, कोई भी नहीं। और अब तो बेटी सीता और लक्ष्मण भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं।
धैर्य रखो माँ, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबका हित है।
यदि यही हित है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा हित।
अब विलंब ना करो, अभी पिताजी से भी आशीर्वाद लेना है। माँ
माँ आशीर्वाद दे माँ। देखिए आपकी सीता आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, इस झोली में अपना आशीर्वाद डाल दीजिए।
जाओ सीता, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी अपने कर्तव्य का पालन।
आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं दे रहे माँ, ये आंसू हमें अधीर कर रहे हैं, इन्हें रोक लीजिए माँ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ के ये आंसू सब कुछ बहा ले जाए। रोक लीजिए इन्हें, रोक लीजिए।
बस महाराज बस कीजिए, आप इस तरह कब तक आंसू बहाते रहेंगे। अब तो जो होना था हो चुका है,
इस सब का अपराधी मैं ही हूं सुमंत, मैं ही हूं। आज मुझे स्वर्ण कुमार की याद आ रही है, उसी ऋषि कुमार के अंधे माता पिता के श्राप का फल भोग रहा हूं।
कैसा श्राप महाराज, कौन ऋषि कुमार, किस ऋषि कुमार की बात कर रहे हैं आप?
ये मेरे युवा अवस्था की घटना है सुमंत। मैं शिकार के लिए निकला था, शिकार करते करते घबराहट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला।
लगता है अब कोई शिकार नहीं मिलेगा, इतनी रात में कौन सा जानवर बाहर निकलेगा भला। ये आवाज कहां से आई, लगता है कोई हाथी जल क्रीड़ा कर रहा है। इसे अभी अपने शब्द भेदी बांध से शिकार बनाता हूं। उसे बचाना होगा।
हे मां, पिताजी।
ऋषि कुमार क्षमा करें कुमार, मैंने समझा कि कोई जानवर जल क्रीड़ा कर रहा है।
ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, मैं कोई जानवर नहीं, श्रवण हूं। अंधे अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था, अब मैं तो जीवित नहीं बच सकता, तुम ही जाकर उन्हें जल पिला दो। हे प्रभु।
कुमार,
मेरे बाण से घायल श्रवण के प्राण निकल गए, मैं उसे मरते हुए देखता रहा, फिर मैं पास ही पड़े उसके जल कलश को लेकर चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसके अंधे माता पिता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे।
आ गए बेटा, बड़ी देर कर दी।
क्या आसपास कोई सरोवर नहीं था बेटा?
तुम चुप क्यों हो, क्या हुआ, क्या जल नहीं मिला? बेटा
मैं श्रवण नहीं हूं, श्रवण अब नहीं रहा माते, भूल से वो मेरे बाण का शिकार हो गया।
अनर्थ, भाभी, तूने मेरे पुत्र का अंत कर दिया, मेरी ममता का वध कर दिया तूने।
तूने उसके साथ हमारा भी वध कर दिया, हमारा भी वध कर दिया।
ईश्वर तुझे भी ऐसी ही पीड़ा दे पापी, तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग के दुख से मरे, पुत्र वियोग के दुख से मरे।
आज मैं वो दुख भोग रहा हूं सुमंत, वही दुख भोग रहा हूं।
महाराज,
पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। राम, जिस मुख से मैंने अपने ही पुत्र को वन जाने का भी शाप दिया, उसी मुख से अब आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं पुत्र।
पिताश्री, जो कुछ भी हुआ मान लीजिए कि वो विधि का विधान था, और आशीर्वाद देकर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए।
कोई बात नहीं पिताश्री, आपको तो याद होगा जब मैं बहुत छोटा था तब शायद आप मुझसे घंटों बातें करते होंगे, मुझे तो तब बोलना भी नहीं आता होगा, फिर मैं उत्तर कैसे देता। पर आप मेरे मौन को ही मेरा उत्तर मानकर बातें करते जाते थे। आज मैं भी आपके मौन को ही आपका आशीर्वाद मानकर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दें।
राम, लक्ष्मण और सीता को विदा करते हुए महाराज दशरथ की चेतना खो गई। वो उस स्थिति में नहीं थे कि अपने पुत्रों और पुत्र वधु को आशीर्वाद दे सके। महल के बाहर सैकड़ों लोग राम की प्रतीक्षा में खड़े थे। अयोध्या की स्त्रियां राम को वन जाते देखने के लिए राजमार्गों पर निकल पड़ी थी।
पाप पुराना बाघता सदा लौट कर खाए, दशरथ भी निज पाप से, दशरथ भी निज पाप से, कहूं बचन ना पाए। रामायण।
मैं काल श्री राम के वन गमन के समय अयोध्या की प्रजा का दुख देखकर मेरी आंखें भर आई थी। बच्चे, बूढ़े, कन्याएं, कुल वधुएं सभी घर से निकलकर राजमार्गों पर आ गई थी। सबकी आंखों में करुणा थी। कुमार श्री राम की जय जयकार से सारी अयोध्या का आकाश गूंज रहा था। श्री राम मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर प्रजा से शांति की कामना करते हुए लक्ष्मण और देवी सीता के साथ प्रजा की आंखों से ओझल हो गए।
इस तरह कब तक रोती रहोगी? श्री राम के वन जाने का दुख किसे नहीं है?
श्री राम के बिना अयोध्या किस काम की? मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी कि मैं भी उनके पीछे वन में चली जाऊं।
पगली, श्री राम के साथ कौन नहीं जाना चाहता है, पर उन्होंने स्वयं मना किया है। कुछ लोग तो उनके मार्ग पर ही लेट गए, पर श्री राम ने निवेदन करके सबको वापस लौटा दिया। अब तो बस हमें उनके वनवास का समय पूरा होने की ही राह देखनी होगी।
इतनी लंबी प्रतीक्षा में तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे।
अयोध्या इतनी पीछे छूट गई है, पर अयोध्या की यादें अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं भैया। मुझे तो गुरुदेव विश्वामित्र के आश्रम की विदाई याद आ रही है।
सिद्धाश्रम की विदाई और अयोध्या की विदाई में बहुत अंतर है लक्ष्मण। उस विदाई में उतनी करुणा नहीं थी जितनी अयोध्या की विदाई में। अयोध्या से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है।
ऐसा लगता है जैसे अयोध्या हमसे सदा के लिए छूटी जा रही है।
ऐसा मत कहो लक्ष्मण, ऐसा मत कहो। अयोध्या हमारा प्राण है, उसकी सदा के लिए छूटने की कल्पना भी जैसे जैसे प्राण ले लेती है।
स्वामी, लगता है कोई रथ से आ रहा है।
पर इस वन में रथ से कौन आ सकता है?
ये रथ तो अयोध्या का है भैया।
मंत्रीवर सुमंत, आप?
मैं महाराज का संदेश लेकर आया हूँ कुमार।
अब कौन सा संदेश शेष रह गया है मंत्रीवर? क्या माता कैकेयी ने वनवास की अवधि और बढ़ा दी है?
शांत रहो लक्ष्मण, शांत रहो। कहिए मंत्रीवर सुमंत, ऐसा कौन सा संदेश है जो महाराज हमें अयोध्या में नहीं सुना सके? क्या हुआ आर्य सुमंत, आपकी आंखों में आंसू?
अयोध्या सूनी हो गई है कुमार, महल में अशांति फैल गई है। महाराज के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे।
पर आप कोई संदेश लाए थे आर्य?
महाराज ने आप सबको अयोध्या लौट चलने को कहा है। उन्होंने कहा है कि रथ से आप सबको वन का भ्रमण करा दूं और फिर आपको वापस लेता हूं।
बस कीजिए सुमंत, बस कीजिए। अब हम इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। आप ये रथ लेकर अभी इसी समय लौट जाएं।
नहीं लक्ष्मण, हम रथ को नहीं लौटाएंगे।
ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अगर आपको यहीं से वापस लौटना था तो आप अयोध्या से चले ही क्यों थे?
हमें महाराज और ताज सुमंत की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए लक्ष्मण।
परंतु भैया।
हाँ लक्ष्मण, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ।
महामंत्री सुमंत की बात सुनकर लक्ष्मण क्रोध से भर गए। उन्होंने उन्हें तुरंत वापस लौट जाने का आदेश सुना दिया, पर राम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा कि वे आर्य सुमंत और महाराज की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो क्या उनके मन में भी वापस अयोध्या लौट चलने का विचार आ गया था?
लक्ष्मण, हमें रात से पहले ये वन पार करते हुए तमसा नदी के तट तक और फिर कल तक श्रृंगवरपुर पहुंचना है, और ये रथ से ही संभव है।
तो क्या आप श्रृंगवरपुर से लौटेंगे?
नहीं, लौटना तो अब असंभव है तात।
ऐसा ना कहें राम।
जो सच है हम वही कह रहे हैं तात सुमंत। अब इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। हमारा वनवास पिताजी के आत्मसम्मान का प्रश्न है तात।
क्या देवी सीता भी?
हाँ तात, लौटने की बात सोचना भी मेरे लिए पाप है।
पर मैं खाली हाथ कैसे लौटूंगा श्री राम? महाराज को क्या उत्तर दूंगा मैं? क्या बताऊंगा उन्हें कि मैं उनके राम को वापस नहीं ला सका? कितने विश्वास से उन्होंने मुझे भेजा था।
बस आगे कुछ ना कहें। रघुकुल की सत्य निष्ठा की रक्षा करते हुए मैंने अपने धर्म का पालन किया है, इसलिए आप व्यर्थ की चिंता छोड़ देना।
किंतु महाराज पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी कुमार?
क्या हुआ बेटा? सुंदरी, तुम दोनों
कुछ भी ठीक नहीं है। महारानी, महारानी कहाँ है महारानी? क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है? महारानी, महारानी, हमारे महाराज, 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 क्या हुआ महाराज को? ये क्या कह रही हो तुम? ठहरो, मैं जाकर स्वयं उससे पूछती हूँ। अब
रहने दीजिए महारानी, कोई लाभ नहीं होगा आपके जाने का।
क्या तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं?
महारानी, महाराज नहीं रहे महारानी।
हो गई है महारानी, महारानी,
महारानी, महारानी कौशल्या, आंखें खोलिए महारानी, आंखें खोलिए। हे ईश्वर, किसकी नजर लग गई है हमारी अयोध्या को?
रथ रोकिए तात्सुमन, रथ रोकिए।
किंतु ये नदी कैसे पार करेंगे श्रीराम?
ये निषाद राज का क्षेत्र है तात, आप चिंता ना करें, वो हमें पार उतार देंगे।
तो क्या ये रथ मुझे खाली ले जाना होगा कुमार?
यदि आप यहाँ से भरत को लेवाने ले जाएंगे तो रथ खाली नहीं लगेगा तात,
और अयोध्या में आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा कि आप युवराज को लेकर आए हैं।
मुझे वैसे सम्मान की भूख नहीं है कुमार लक्ष्मण। कौन नहीं जानता कि राम के बिना भरत अधूरे हैं, अयोध्या अधूरी है, हम सब अधूरे हैं।
आप विलंब न करें तात सुमंत, हमारे नदी पार करने का समय हो चुका है। महाराज, माताओं और गुरु वशिष्ठ को हमारा प्रणाम कहिएगा। अब और देर मत कीजिए, महाराज का सारा भार आप पर ही तो है।
ठीक है श्री राम।
श्री राम ने महामंत्री सुमंत को विदा तो कर दिया था, पर उन्हें ये कहां पता था कि उन्होंने जिस पिता को अपना प्रणाम भेजा है वो उनके प्रणाम लेने के लिए अब इस संसार में है ही नहीं। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस महल से विदा लेकर वन के लिए निकले थे वो स्वयं वन जैसा हो गया है, भयानक सूनापन ओढ़े हुए, जहां किसी मनुष्य का दूर दूर तक कोई आवाज नहीं मिलता।
राम नाम मुख में लिए छूटे दशरथ प्राण, गिरी रानिया भूमि पर, गिरी रानिया भूमि पर, हुआ महल वीरा।
कैसा संयोग था, इधर महाराज दशरथ के प्राण निकले और उधर श्री राम, सुमित्रा, नंदन, लक्ष्मण और जानकी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। जैसे राम गंगा के तट पर पिता का तर्पण करने पहुंचे हैं। राम को गंगा पार करनी थी, नौका भी सामने थी, किंतु निषाद राज कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण प्रतीक्षा करते करते अधीर हो गए, राम चिंतन की मुद्रा में थे, जैसे उन्हें अयोध्या के सूने होने का आभास हो गया।
भैया, ये किस सोच में डूब गए हैं आप?
कुछ नहीं, मैं क्या सोच रहा था, हाँ सोच रहा था कि जब तक निषाद राज नहीं आ जाते तब तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा।
निषाद राज के लिए और कितनी प्रतीक्षा करें भैया, आप आदेश दें, मैं उन्हें अभी ढूंढ कर ले आता हूँ।
नहीं लक्ष्मण, निषाद राज स्वयं आ जाएंगे, कोई तो कारण होगा उनके विलंब का।
वहां जाना तो है पर हम कैसे जाएं?
कैसी बात करते हो जी, तुम निषाद राज हो और वहाँ घाट पर लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाके उन्हें नदी पार नहीं कराओगे तो हम खाएंगे का?
अरे पर हम कुछ और सोच रहे हैं भगवान, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा कमाई का दिन है, जो आज कमा लिया वो जन्म जन्मांतर तक काम आएगा।
कैसा उल्टा सीधा बात कर रहे हो जी, घर में बैठे बैठे जन्म जन्म भर की कमाई का सपना देख रहे हो, बौरा गए हो का? सुनो कहीं तुम भांग धतूरा तो नहीं खा लिए?
तुम नहीं समझोगी भगवान, आज हमारी नौका पर सवार होने वाला कौनो साधारण मानुष नहीं है, अगर वो चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना दे।
हमको मत बहकाओ जी, तुम काम पर जाओगे या हम जाएं?
तुम तो बना बनाया काम भी बिगाड़ दोगी, तुम चुपचाप घर में बैठो, निषाद रानी हो रानी जैसे ही रहो। हम विचार कर रहे हैं कि इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं।
तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे घाट पर साक्षात भगवान आ गए हैं।
तुम ठीक है समझी, घाट पर भगवान ही आए हैं, उनका कृपा हुआ तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे।
अच्छा अगर ऐसा बात है तो सोच का रहे हो, अभी चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ।
हे भगवान, यहाँ हम धर्म संकट में है कि तुम्हारे चरणों का अमृत कैसे पाए, कौन सा जुगत लगाए कि तुम्हारे चरणों का प्रसाद पा सके, और हमारी त्रिया सब मिट्टी में मिलाई दे रही है।
सुनो जी, जो हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो अपने चरणों का प्रसाद नहीं देंगे का?
हम चलते हैं।
अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो, बिल्कुल ही सनक गए हो का, अचानक कहाँ हो गया तुमको?
अरे भगवान हम समझ गए कि प्रभु का चरणामृत कैसे पाना है।
पर हम भी साथ चलेंगे, तुम अकेले सारा प्रसाद लूट के स्वर्ग पा जाओगे और हम यहाँ नरक में सड़ते रहेंगे।
बस भैया अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं स्वयं नौका लेकर आता हूँ।
नहीं लक्ष्मण, जो जिसका कार्य है उसे ही करना चाहिए।
आप ही तो कहते हैं भैया कि मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्या ऐसी परिस्थिति में हमारा ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ठीक है?
धैर्य रखो लक्ष्मण, निषाद राज को हमारे यहाँ आने की सूचना मिली है तो वो अवश्य आएंगे।
हम आ गए प्रभु, प्रभु हम आ गए।
निषाद राज केवट ने सोच लिया था कि वो आज प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, और उसके लिए उसने एक योजना भी बना ली थी। कैसी अनोखी योजना थी निषाद राज की।
अब विलंब ना करें निषाद राज, हमारी यात्रा बहुत लंबी है।
और निषाद राज हमें वन का मार्ग भी तो पता नहीं है, रात हो गई तो हम भटक जाएंगे।
सब कुछ जानते हुए भी आपने इतनी देर कर दी, क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि हम आपके कारण यहाँ भोर से रुके हुए हैं?
अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है लक्ष्मण। निषाद राज आप नौका ले आए।
नौका लाने के पहले हमको आशीर्वाद दें प्रभु, आपका आशीर्वाद से हमें सारे दुख मिट जाएंगे। और
अरे तुम चुप रहो जी, हम बात कर रहे हैं ना, फिर काहे टांग अड़ा रही हो बीच में?
पत्नी को भी तो कुछ कहने दीजिए निषाद राज।
अरे नहीं प्रभु, ये एक बार शुरू हो गई तो चुप नहीं होगी। पर हम कहते हैं प्रभु कि नदी पार करने के लिए नाव का कौन जरूरत है, धारा तेज नहीं है, आप लोग नदी में उतरिए तो सही, आराम से तैरकर पार निकल जाएंगे।
कैसी बातें कर रहे हैं निषाद राज, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप हमें बिना नौका के नदी पार करने को कहने लगे।
कहा करे प्रभु, आपसे यह तो नहीं कह सकते कि हम आपको नौका पर चढ़ा नहीं सकते। कहीं आपको क्रोध आ गया तो भला आपके सामने हमारी कौन बिसात।
निषाद राज, हम ऐसी बातें सुनने के आदि नहीं हैं। आपको ये कहने का साहस कैसे हुआ कि आप हमें नाव पर नहीं चढ़ाएंगे?
लक्ष्मण।
अरे ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि प्रभु का चरणामृत पाके हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा।
हम अब भी यही कह रहे हैं मूर्ख, पर जरा बुद्धि लगा। क्या भगवान ये कहकर हमको चरणामृत दे देंगे कि वो भगवान है?
हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं। भला भगवान खुद का भगवान का ही कहेंगे।
तो बस अब तनिक धीरज रख और देख कि हम का कर रहे हैं।
भैया ये निषाद राज बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं।
पहले हमें उनसे ये जानना चाहिए कि वो ऐसा कह क्यों रहे हैं। कोई तो कारण होगा उनके ऐसा कहने का।
हाँ निषाद राज, भला हमें अपनी नौका पर बिठाने से मना करने का क्या कारण है?
प्रभु, वो हम आपका सत्य जानते हैं।
कौन सा सत्य? हमारे वनवास का सत्य तो पूरी अयोध्या जानती है। जिस सत्य को हम सब ने भोगा है, जिस सत्य को अयोध्या का राजमहल जाने कब तक भोगता रहेगा।
कौन सी भूल की थी हमने कि ईश्वर ने हमें ये दंड दिया है? गुरुदेव आप ही बताइए, कौन सी भूल की थी हमने? एक ही पल में पुत्र और पति दोनों हमसे मुंह मोड़कर चल दे। क्यों गुरुदेव, क्यों क्यों?
मृत्यु तो अटल सत्य है देवी कौशल्या, उसको कौन टाल सकता है भला। और उससे भी बड़ा सत्य है कि राम पर सिर्फ आपका ही नहीं सारे संसार का अधिकार है। अब विलाप करने से क्या होगा, जो होना था तो हो चुका। अब जब राम लक्ष्मण और सीता यहाँ नहीं है तो आप कुमार भरत और शत्रुघ्न को यहाँ बुलवाने का प्रबंध करें।
अवश्य गुरुदेव, वो तो सोच रहे होंगे कि अयोध्या आते ही उनके पिता और भाई राम उन्हें दौड़ कर गले से लगा लेंगे। उन बेचारों को क्या पता कि यहाँ अयोध्या में हम सब पर कैसे बिजली टूट पड़े हैं।
महाराज दशरथ की मृत्यु से अयोध्या की प्रजा का दुख दुगना हो गया था। कौशल्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दुखी तो कई भी थी, पर जो कुछ उन्होंने किया था उसको देखते जानते हुए भला उनका दुख कौन सुनता। इधर महाराज दशरथ की चिता तैयार हो रही थी और उधर ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को आभास भी नहीं था कि उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी।
भरत गए ननिहाल जब खेला विधि ने खेल अपने लाल हित कहके अपने लाल हित कहके रही वियोग पति झेल।
रामायण। मैं काल हूं। राम लक्ष्मण और सीता केवट की बातें सुनकर आश्चर्यचकित थे, जबकि लक्ष्मण धीरे धीरे अपना धीरज खो रहे थे। पर राम ने बड़े ध्यान से केवट की बातें सुनी केवट तो ऐसे ही अवसर की ताक में था कि वो किसी तरह प्रभु के श्री चरण छू सके और उनका आशीष ले सके। केवट की पत्नी भी नहीं समझ पा रही थी कि जिस श्री राम के लिए पति के मन में इतना मान सम्मान है, उन्हें वो अपनी नौका पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहता। और अंततः केवट ने अपने मन की बात श्री राम से कह दी।
प्रभु, हम ठहरे साधारण केवट, हमारी रोजी का बस एक ही आधार हमारी नौका है। अगर ये नौका भी हमारे हाथ से निकल गई तो हम और हमारा परिवार कैसे जिएगा?
परंतु नौका आपके हाथ से कैसे निकल जाएगी निषाद राज? ये तो सदा से आपकी है और आपकी ही रहेगी।
अरे प्रभु, आपके चरण धूलि के स्पर्श भर से जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारी नौका का कौन विसात? कहीं यो नारी बन गई तो हम का खाएंगे और का खिलाएंगे दुई दुई नारियों का?
आपके मन में ये भ्रम कैसे पैदा हो गया निषाद राज? किसने बताया ये सब?
प्रभु, श्री राम का प्रताप किससे छुपा है माई?
यदि आप कहना चाहते हैं कि आप हमें नदी नहीं पार करा सकते तो साफ साफ बता दीजिए, हम कोई दूसरा उपाय ढूंढ लेंगे।
ठहरो लक्ष्मण, मैं निषाद राज का संकट समझ रहा हूँ। इनकी शंका का समाधान हमें ही करना होगा। तो बताइए निषाद राज, हम आपकी शंका का समाधान कैसे करें?
समाधान तो एक ही है प्रभु, अगर हम आपके पैर धो लें तो आपकी चरण धूली बह जाएगी और सारा संकट भी दूर हो जाएगा।
बस इतनी सी बात कहने के लिए आपने इतना समय लगा दिया, तो आइए ये कार्य अभी पूरा कर लीजिए।
आपके ये चरण पखार कर हम भवसागर पार कर जाएंगे और फिर आप नदी पार कराने को तो कहा, प्राण देने को भी कहेंगे तो वो भी दे देंगे हम। अब कृपा करके हमारे कथौड़े में अपने पैर डाले प्रभु, हम अपने आंसुओं से धोना चाहते हैं इन्हें। बस प्रभु बस, लगता है हम ऐसे ही जीवन भर ये चरण पखारते रहे।
डाले कथौटी में प्रभु चरण, लगी अश्रु की धारा, जामे प्रभु चरण रजबाही, बाही प्रेम की धारा।
अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई ना शात्राज, अब शीघ्रता करें।
नहीं प्रभु नहीं, इतनी जल्दी हम इन चरणों को कैसे छोड़ दें? इन चरणों के साथ साथ हमें अपने मन का मैल भी तो धोना है।
कहा स्वामी, बस तुम ही प्रभु के चरण धोए जाओगे या हमें भी धोने दोगे? हमका भी तो ये चरण रज पीने दो।
अरे पगली, तुझे रोका किसने? हम साथ साथ इन चरणों को पखारेंगे और साथ साथ भवसागर पार कर जाएंगे। हमारा जीवन धन्य हुआ प्रभु, अब आप तीनों इस नौका पर सवार हो जाएं।
देखिए ना स्वामी, कैसे भोलेपन से इन्होंने आपकी सेवा की। किसी का छल भी ऐसा भोला और पवित्र हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। निषादराज की भावनाएं कितनी पवित्र हैं स्वामी, इनकी कितनी आस्था है आप में।
निषादराज जैसे लोगों की आस्था और सहयोग से ही हमारा ये वनवास सफल होगा।
इस वन यात्रा से इस आस्था का संबंध है स्वामी?
हमारा उद्देश्य वन में रहने वाली विभिन्न जातियों के बीच एकता पैदा करना है सीते, और ये तभी संभव है जब सभी का हम में विश्वास हो।
तो क्या ये सब आपने पहले से ही सुनिश्चित कर रखा है स्वामी?
वनवास का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना सीते।
नौका पर सवार हो श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने गंगा पार की। निषाद राज ने बड़े प्रेम से उनका मार्गदर्शन किया था और भविष्य में किसी भी सहायता का विश्वास दिलाया। श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक निषाद राज का निवेदन स्वीकार करते हुए भरद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान किया था। दूसरी ओर दूत भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर अयोध्या पहुंचे थे।
भैया भरत, सबकी आंखों में आंसू क्यों हैं?
हाँ शत्रुघ्न, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अयोध्या के राजमहल में नहीं कहीं और आ गया हूं। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पूरी अयोध्या जैसे गूंगी लग रही है मुझे।
रास्ते में भी कोई चहल पहल नहीं दिखाई दी। राजमार्ग सूना पड़ा था। पता नहीं अचानक क्या हो गया हमारी अयोध्या को।
चलो पिताश्री से मिलकर सारी सूचना लेते हैं।
तात्सुमंत, पिताश्री कहाँ है? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे।
अरे क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हैं तात? कहाँ है पिताश्री?
महाराज के बारे में आपके माता श्री ही बताएंगे कुमार।
माँ, माँ, माँ कहाँ हो माँ?
भरत, भरत आओ पुत्र आओ, मैं जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी।
पिताश्री कहाँ है माँ? ना वो दरबार में दिखे और ना अपने कक्ष में।
तुम अभी विश्राम करो पुत्र, लंबी यात्रा से आए हो, थक गए होगे, विश्राम करो।
तुम बातें क्यों बदल रही हो माँ? क्या पिताश्री स्वस्थ नहीं है?
पुत्र, सांसारिक प्राणियों की जो गति होती है तुम्हारे पिताजी की भी वही हुई। वो इस संसार में नहीं रहे। क्या हुआ पुत्र, क्या हो गया तुम्हें? भरत तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? भरत, तुम्हारे जैसा वीर पुत्र धीरज खो देगा तो अयोध्या का क्या होगा?
मां, बोलने के लिए अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा।
मृत्यु तो अटल सत्य है पुत्र, उसे कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। तुम्हारे शोक करने से वो लौट कर नहीं आने वाले।
मां, मैंने तो सोचा था कि भैया का राज अभिषेक होगा तो पिताजी हमारे लिए बुलावा भेजेंगे, पर पिताजी ही नहीं रहे। मां, महाराज का ऐसा कौन सा रोग हो गया था कि मुझे सूचना देने का भी समय नहीं मिला? हे ईश्वर, भैया राम और लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने पिताजी के अंतिम दर्शन तो किए।
माँ, वो दोनों कहाँ हैं? माँ, वो ठीक तो है ना?
राम, राम अब यहाँ नहीं है पुत्र।
क्या नहीं है? ऐसे आपका क्या मतलब? ऐसे समय में कहाँ गए वो?
वो लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर वनवास चले गए हैं।
माँ, ये क्या कह रही हो माँ? वो वनवास क्यों जाएंगे?
भरत, भरत जिसके भाग्य में जो होता है वो वही पाता है पुत्र। इस बात पर तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता ही क्या है?
माँ, पहले सच सच बताओ, कहाँ है भैया, कहाँ है भाभी?
मैं सच कह रही हूँ पुत्र, सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। वो तुम्हारे भले के लिए ही वनवास चले गए हैं।
नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता माँ,
ऐसा नहीं हो सकता। भैया भाभी हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते माँ, कभी नहीं। ये ठीक नहीं हुआ माँ, ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ।
भरत,
माता के कई की बातें सुनकर भरत के होश उड़ गए। उनकी आंखों में आंसू की धारा उमड़ पड़ी, लगा उनके प्राण ही निकल जाएंगे। केकई को तो लग रहा था कि वो भरत को उनके राज्याभिषेक की सूचना देकर बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तात तात पुकारते हुए मूर्छित होकर गिर गए।
तात तात हाँ, तात पुकारे और पुकारे राम नाम। पड़े भूमि पर नीर बहाए, पड़े भूमि पर नीर बहाए, और न दूजा
रामायण। मैं काल भरत श्री राम के वनवास की सूचना पाकर मूर्छित से हो गए। शत्रुघ्न को तो लगा जैसे वो पल भर में अनाथ हो गए हैं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उधर श्री राम जानकी और लक्ष्मण प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्हें महाराज दशरथ की मृत्यु की सूचना नहीं थी। वो अपनी आगे की यात्रा और ऋषि महर्षियों के कल्याण की योजना बनाने में लगे थे। इधर जब भरत की मूर्छा टूटी तो वे केकई की घृणित सोच जानकर कांप गए।
माँ, ये अनहोनी कैसे हुई माँ? भैया राम को किसने वनवास की अनुमति दी? भाभी सीता को किसने ये अभिशाप दिया? किसने किया ये सब माँ? कौन कर सकता है? बताओ माँ, बताओ मुझे।
पुत्र, ये सारा कुछ तुम्हें राजपद दिलाने के लिए हुआ है।
क्या? तो क्या महाराज ने ऐसा निर्णय लिया था?
वो भला ऐसे कैसे कर सकते थे पुत्र? महाराज तो अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को ही राजगद्दी देना चाहते थे, किंतु मैंने इसका विरोध किया। मैंने उन्हें ऐसा करने पर विवश कर दिया।
अनर्थ, घोर अनर्थ माँ, घोर अनर्थ।
पहले पूरी बात तो सुन लो पुत्र। जब मैंने सुना कि राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है, तो मैंने तुम्हारे लिए महाराज से तुम्हारे अधिकार की मांग की। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, पर मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं। मैंने उनकी एक नहीं सुनी और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी।
क्यों, क्यों मां, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया माँ? क्यों किया ये अधर्म? क्यों?
तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए पुत्र, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे ऐश्वर्य के लिए, मान सम्मान के लिए।
नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा मान सम्मान। नहीं चाहिए मुझे अयोध्या का सिंहासन।
भावनाओं में बहकर राज सुख मत चुकाओ भरत। पिता के लिए शोक ठीक है, पर राज सुख छोड़ना मूर्खता है। अयोध्या अब तुम्हारी है पुत्र, केवल तुम्हारी। तुम अकेले निष्कंटक राज करोगे अयोध्या पर।
नहीं, ईश्वर के लिए मेरे घाव पर और नमक मत डालो मां। तुमने पाप किया है। क्या हो गया था तुम्हारी मति को जो तुम्हें नीति अनीति, मान अपमान और यश अपयश का भी ध्यान नहीं रहा?
ये
ठीक कह रहा हूं मां, ठीक कह रहा हूं। यदि मुझे ये पता होता तो मैं अयोध्या आने से पहले ही अपने प्राण दे देता। तुमने सूर्य कुल पर ऐसा कलंक लगाया है मां कि कोई 100-100 जन्मों में भी इसे मिटा नहीं सकेगा।
मेरी ममता पर संदेह न करो पुत्र, मैंने मां का धर्म निभाया है।
मां, तो क्या भैया राम तुम्हारे पुत्र नहीं है? क्या लक्ष्मण को तुम अपना पुत्र नहीं मानती? क्या भाभी सीता तुम्हारी बहू नहीं है?
ऐसा ना कहो भरत,
मत बहाओ झूठे आंसू, उनसे ये कलंक नहीं मिट सकता। मां, मां कौशल्या और मां सुमित्रा पर भी तुम्हें दया नहीं आई? उनके बारे में कुछ नहीं सोचा? उनकी ममता का तनिक विचार तो किया होता मां?
पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं और अपनी मां को तुम्हें
मां कहते हुए भी मुझे लज्जा आती है। भरत की मां ऐसी कैसे हो सकती है? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है मेरी मां? तुम्हें यह भी नहीं पता था कि रघुकुल में राजपद का अधिकार केवल ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है?
जानती थी, मैं सब जानती थी पुत्र, पर ममता राजकुल से ऊपर होती है। तुम एक मां को नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं।
इन आंसुओं से तुम्हारा पाप नहीं धुल सकता। सत्यानाश कर दिया तुमने, सत्यानाश। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महाराज को किसी ने क्यों नहीं रोका। जाने वो तुम्हारी बातों में कैसे आ गए।
मैंने केवल तुम्हारे लिए पत्र, केवल तुम्हारे लिए।
कैकेयी की स्थिति बड़ी दुखद हो गई थी। कुमार भरत उन्हें लगातार फटकारते जा रहे थे। पहले तो उनके पिता की मृत्यु का ही दुख था, राम के वन जाने की सूचना से तो वो टूट ही गए। दूसरी ओर श्री राम महर्षि भरद्वाज का आशीर्वाद लेकर अन्य ऋषि महर्षियों से मिलने के लिए निकले थे। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां हैरान थीं।
कितने सुंदर है तीनों, लगता है जैसे भगवान धरती पर आ गए हों।
पर ये लोग ऐसे वन में क्यों भटक रहे हैं? इनको तो महलों में होना चाहिए।
ईश्वर की लीला भी बड़ी निराली है। देखो ना, ऐसी फूल सी कोमल नारी कांटों पर चल रही है। बेचारी के पांव चिले चिले जाते हैं। पता नहीं किसने नजर लगा दी है इसके सुखों को।
जान पड़ता है ये कहीं के राजा हैं, जिन्हें किसी कारण वन में आना पड़ा।
हमें तो उस रानी पर दया आ रही है जो उस सांवरे सलोने के साथ चल रही है। कैसी थक गई है बेचारी।
चलना चलना, इनसे बातें करते हैं।
पर क्या बातें करेंगे, हम तो ठहरे गवार अनपढ़, क्या और कैसे पूछेंगे इनसे।
अरे इसमें सोचना क्या है, तू भी ना चल, मैं पूछती हूँ।
क्यों जी,
कहाँ से आना हुआ है आपका
और आप तीनों को जाना कहाँ है?
आप किस घर की लक्ष्मी है देवी, कौन सा धाम है आपका?
अरे आप तो हंस रही हैं, इतना कष्ट सहते हुए भी हंसी आ रही है आपको।
बताइए ना देवी, वो सांवरे और गोरे कौन है आपके और आपको कहाँ ले जा रहे हैं? ये मुझे नहीं ले जा रहे हैं बहन, मैं इनके साथ जा रही हूँ।
पर आप जा कहाँ रही हैं?
जहाँ ये जा रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? क्या पता, जहाँ इनका मन ले जाए।
बातें बहुत अच्छी करती हो देवी।
अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि ये दोनों रूपवान पुरुष आपके हैं कौन?
वो सुंदर सांवरे सलोने जो आगे आगे चल रहे हैं मेरे स्वामी हैं, और गोरे वाले हैं ना जो बालक से लगते हैं, वो मेरे देवर हैं।
एक बात कहूँ देवी, तुम्हारे सांवरे सचमुच बहुत सलोने हैं।
तो क्या इनके पास कोई काम नहीं है जो इन वनों में भटक रहे हैं?
आपने इनका नाम तो बताया ही नहीं।
गोरे वाले का नाम लक्ष्मण है और सांवरे का नाम तो उन्हीं से पूछ लो। मैं समझ गई, आप अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती, अच्छे संस्कार हैं।
देवी सीता, कौन है ये स्त्री और क्या कह रही है?
पता नहीं कौन है स्वामी, जान पड़ता है ये वनवासी हैं। आपको देखकर सब भाग आई, बड़ी प्यारी हैं सब।
पर ये जानना क्या चाहती थी भाभी?
इन्हें हमें वन में भटकते देखकर आश्चर्य हो रहा था, आप दोनों के संबंध में पूछ रही थी।
ये वनवासी बड़े सीधे साधे हैं सीते, कोई छल कपट नहीं, गंगा जैसा पवित्र मन।
पर ये इन वनों में रहते कैसे हैं? इन्हें राक्षसों का डर नहीं है स्वामी?
राक्षसों से कौन नहीं डरता, पर ये कर भी कह सकते हैं, उसी डर के साए में जीना पड़ता है।
आप तो इनके लिए कुछ कर सकते हैं ना स्वामी?
हाँ अवश्य, हमें ही करना होगा।
श्री राम वन जीवन की कई बातों पर देर तक विचार करते रहे। उन्हें बार बार लग रहा था कि वनों में ये जो भय का वातावरण है वो समाप्त होना चाहिए, मानवता की रक्षा होनी चाहिए। वो जानकी और लक्ष्मण से यही विचार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे।
देख वनों में भय का सागर, दुखी भय जब राम, दुख हरण का शुभ विचार, दुख हरण का शुभ विचार लिए पलठान।
पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।
राम।